थे स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
रिमझिम रिमझिम प्यारे की बरखा क्रूस से बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यारे की बरखा क्रूस से बरसी है आज। खून में नहाए रहम और माफी की मेघा बरसी है आज। मेघा बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज। लौट के आजा चरणों में उसके, मौका ये खोना ना। लौट के आजा चरणों में उसके, मौका ये खोना ना। घर की राह भी तरसी है आज। तेरे मिलन को बाप के घर की राह भी तरसी है आज। तुम्हें नहाए रहम और माफ की मेघा बरसी है आज। बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम यहोशू की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर ने मूसा के मृत्यु के पश्चात यहोशू को उसका अगुआ बनाया ताकि इसराइलियों को कनान देश में प्रवेश कराए। आइए हम आज इस अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित तो और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम अपने श्रोताओं के साथ में आपके जीवित वचन का अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जब हम आपके जीवित वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, उस पर विचार और विमर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन हमें से प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए। हम नहीं जानते कि हमारे श्रोता भाई बहनों के जीवन में किस प्रकार की तकलीफें हैं। पिता परमेश्वर, आप हर एक बातों को जानते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के द्वारा आप उनसे बातचीत करें, ताकि उनका विश्वास आप पर बढ़ने पाए, इस बात को वे जानने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। जिस प्रकार आप इसराइलियों से प्रेम करते थे, अपने लोगों से आज भी आप प्रेम करते हैं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमारी हालत में है, जो तकलीफ और कष्ट में है। प्रभु, आप उनकी भी सुधि लें, ताकि वे भी आप पर भरोसा रख सकें। इस वक्त फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय मित्र, आज हम आगे बढ़ेंगे और यहोशू की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 2 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे नई पीढ़ी का खतना। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 से 5 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नाम टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह नई पीढ़ी खतना के प्रति लापरवाह थी, जो वास्तव में अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था। अब्राहम के साथ बंधी वाचा के कारण ही इसराइल को कनान देश मिला था, परंतु जंगल प्रवास के कारण उन्होंने इस संस्कार पर ध्यान नहीं दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 5 अध्याय उसके 6 से 9 पद में लिखा है, क्योंकि इसराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारे जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग लोग मिस्र से निकले थे, वे नाश ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है, गिलगाल अर्थात लुढ़कना। मेरे मित्रों, उन्होंने न तो आत्मा में और न ही देह में इस संस्कार को निभाया था, जबकि वह अब्राहम की वाचा का चिन्ह था। इसराइल 40 वर्ष जंगल में भटकता रहा और मिस्र से निकल आने वाले सब वयस्क अर्थात जवान जो योद्धा थे समाप्त हो गए थे। परमेश्वर ने उन्हें संतान प्राप्ति से आशीषित किया था और इसी नई पीढ़ी का खतना यहोशू ने किया। इस समय परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के कलंक से मुक्त किया अर्थात मिस्र के दासत्व के अंतिम वर्षों में उन्होंने खतना नहीं किया था और जंगल में भी वे उसी दशा में थे और यही कारण था कि उस स्थान का नाम जहां यहोशू ने उनका खतना किया गिलगाल पड़ा। गिलगाल का अर्थ है मोचन अर्थात लुढ़कना या हटना। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, सो इसराइली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरोहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। यह वर्ष के उत्तरार्ध में बसंत ऋतु का समय था जब वहाँ वर्षा होती थी। इसी समय उन्होंने खतना का संस्कार भी किया और फिर फसह का पर्व मनाया। उनकी नामधराई दूर हुई और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अब्राहम के वंशजों को वह देश देगा। यह प्रतिज्ञा अब पूरी होने वाली थी। मेरे मित्रों, इसमें हमारे लिए अंतिम संदेश है, पुराना स्वभाव किसी लाभ का नहीं। पुराना स्वभाव अंतिम आशीषें नहीं लाता है, परंतु स्वभाव आत्मिक आशीषों का आनंद लेने योग्य भी नहीं है। पुराना स्वभाव न तो कनान और न ही स्वर्गिक वस्तुओं को स्वीकार करेगा। हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, अर्थात युद्ध करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मेरे मित्रों, पौलुस का यह अनुभव था कि पुराने स्वभाव में कोई अच्छाई नहीं है। आप रोमियो के पत्र 7 अध्याय को देख सकते हैं। इसराइल के खतने ने इस सत्य को स्थापित किया है। हम यहोशू के पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन के विहान को मन्ना बंद हो गया और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाई। मेरे मित्रों, नए नियम में कहा गया है कि मन्ना मसीह यीशु का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 49 से 51 पद में यीशु कहता है, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मेरे मित्रों, मन्ना मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। वही है जो पृथ्वी पर आया था कि अनेकों के छुटकारे के लिए अपना जीवन दे, अर्थात प्राण दे। मेरे मित्रों, कनान प्रवेश के बाद इसराइल को मन्ना मिलना बंद हो गया, अर्थात समाप्त हो गया था। अब वे उस देश का अन्न खाने लगे थे। अब हम आगे देखते हैं स्वर्गिक प्राणी का आगमन और यहोवा की सेना का प्रधान। मित्रों, यह यहोशू की बुलाहट और कमान का सौंपा जाना था, और ठीक वैसे ही जैसे मूसा को मिद्यान देश में जलती हुई झाड़ी का साक्षात्कार हुआ था। निर्गमन 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि मूसा को आदेश दिया गया था कि वह अपने जूते उतार दे, क्योंकि वह स्थान जहां वह खड़ा था पवित्र स्थल था। इसराइल यरदन पार करके पश्चिम क्षेत्र में पड़ाव डाल चुका था, और एक दिन प्रातःकाल यहोशू उस स्थान को निहार रहा था। दृश्य अति प्रभावशाली था। उसके चारों ओर इसराइल के 12 गोत्रों के शिविर थे। मेरे विचार में यह देख उसका मन गर्व से फूल गया होगा। वह सर्वे सर्वा था और मुख्यालय उसका शिविर था। उसी समय उसकी दृष्टि छावनी के अंत पर पड़ी। वहां एक पुरुष हाथ में तलवार लिए खड़ा था। यहोशू ने मन में सोचा, वहां कोई पुरुष है जो यह नहीं जानता कि यहाँ का प्रधान मैं हूं। मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूं। अतः वह वहां गया और उससे पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तलवार लेकर कैसे खड़ा है? मेरे विचार में वह देह धारण से पूर्व का मसीह था। उसने यहोशू से कहा, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। यहोशू की प्रतिक्रिया को देखिए। उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। मेरे प्रिय मित्रों, यहोशू समझ गया था कि मुख्यालय उसका शिविर नहीं है, परमेश्वर का सिंहासन है। वह किसी के अधीन था और उसे आदेश स्वीकार करने की आवश्यकता थी। यह हम अगले अध्ययन में देखेंगे, जब वह यरीहो नगर का 7 दिन चक्कर काटेगा। यदि आप इसी बीच 6ठे दिन यहोशू से पूछते कि जो वह कर रहा है उसमें समझदारी दिखाई नहीं देती है, तो वह कहता, जी हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, परंतु मुझे ऊपर से आदेश है कि ऐसा ही करूं। क्यों? आप तो प्रधान हैं, है कि नहीं? मैं तो केवल हुक्म का गुलाम हूं। मेरे ऊपर कोई है जो मुझे आदेश देता है और मैं वैसा ही करता हूं। मेरे प्रियो, यरीहो वासी यह सुनकर कि यहोवा ने कैसा सामर्थी कार्य करके नदी का बहाव रोका और इसराइल को नदी पार करवाई, अत्यधिक भयभीत हो गए थे और अपना शहर बंद कर लिया था। अब आगे उनके विजय अभियान की विधि को देखिए। अब प्रतिज्ञा के देश का विजय अभियान आरंभ होने को है, तो आइए हम अब तक की उन घटनाओं का पुनरावलोकन करें। इसराइल चमत्कारी रूप से यर्दन पार करके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करता है। यर्दन नदी गर्मियों में तो मात्र पतली सी धारा होती है, परंतु वर्षा ऋतु में उसमें बाढ़ आ जाती है। आपको ध्यान होगा कि वाचा का संदूक उनके आगे आगे चला था और ज्यों ही उसे उठाने वाले याचकों का पांव पानी से स्पर्श हुआ, पानी तुरंत रुक गया। वे नदी के मध्य जाकर खड़े हो गए। उनके कंधों पर वाचा का संदूक था। इसराइल की प्रजा जब नदी पार कर चुकी, तब यहोशू ने उस स्थान पर जहां याजक वाचा का संदूक लेकर खड़े थे 12 पत्थर रख दिए। मेरे मित्रों, इसराइल अब यर्दन के पश्चिमी तट पर था और वहां यहोशू ने 12 पत्थरों का स्मारक स्थापित किया। उनकी आशा कैसी महिमामय और अपूर्व रही होगी। परमेश्वर ने उन्हें यही देश देने की प्रतिज्ञा की थी, जहां पर दूध और शहद का देश है। यह वह देश था जिस पर अधिकार करने का आदेश उन्हें दिया गया था। उनके मन उत्साह से भरे हुए थे, उनमें आशा और आनंद की लहर दौड़ रही थी। मेरे मित्रों, लेकिन उन्हें खतना द्वारा विजय के लिए तैयार किया गया, क्योंकि खतना परमेश्वर द्वारा अब्राहम के साथ बांधी वाचा का चिन्ह था और उसी वाचा के अधीन उन्हें वह देश मिलना था। आपको ध्यान होगा कि यहोशू ने खतना करने के लिए तेज धार की छुरियां तैयार की थी। हमारे जीवन से इसका संबंध कैसा है? मेरे लिए तेज धार की छुरी परमेश्वर का वचन है, जिसे इब्रानियों का लेखक दो धारी तलवार कहता है, और हम इसे इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, वह काटने में समर्थ है। आज हमारे देश में नैतिकता लगभग समाप्त हो चुकी है, परंतु परमेश्वर का वचन अब भी स्पष्ट दर्शाता है। मित्रों, हमें बाइबल के सदाचार में लौट आना है, क्योंकि बाइबल के बिना किसी को आशीष नहीं मिलेगी। हम आगे पाते हैं कि विजय अभियान की तैयारी में एक बात और थी, यहोवा की सेना के प्रधान का आगमन। कप्तान यहोशू उसे आदेश प्राप्त करेगा। विजय का प्रथम चरण यरीहो है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी रणनीति में भूमि का विभाजन भी था। यरीहो और ए नगर ले लेने पर वे केंद्र में होंगे और उसके उपरांत दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। यही रणनीति तब से आज तक सब बड़े बड़े सेना नायकों ने अपनाई है कि बैरी की भूमि का विभाजन करें। वे बैरी को विभाजित करके एक एक चरण विजय प्राप्त करते हैं। यही रणनीति विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय में अपनाई गई थी, तथापि यरीहो विजय की रणनीति उन्होंने दूसरी बार कहीं काम में नहीं ली। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से जारी रखेंगे। हम यहाँ अध्याय 6 उसके 1 पद में पढ़ते हैं, और यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। अब ध्यान दीजिए कि यरीहो इसराइल के आक्रमण के लिए तैयार था, परंतु उन्होंने युद्ध में शीघ्रता की आशा नहीं की थी, अतः वे नगर का द्वार बंद करके युद्ध के लिए तैयार बैठे थे। तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 6 अध्याय उसके 2-5 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना, और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंहे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले, और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। मेरे मित्रों, इस पर ध्यान दीजिए कि आक्रमण का दिन भी आया और यहोशू ने परमेश्वर के आदेशों का विधिवत पालन भी किया। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 6 अध्याय उसके 8 से 11 पद में लिखा हुआ है, सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चलें। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला, और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। मेरे मित्रों, यरीहो युद्ध के लिए तैयार था और निसंदेह शहरपनाह का सैनिक भी तैनात थे तथा नगर द्वार पर संतरी थे। सेना अधिकारी और कर्मी शहरपनाह से समाचार प्राप्त कर रहे थे। अंत में उन्हें संदेश मिलता है कि शत्रु की सेना आ पहुंची है। यहोशू और इसराइल की सेना नगर की ओर बढ़ रही है। उनके आगे आगे संदूक उठाए हुए कुछ लोग चल रहे हैं, उनके हाथों में तुरही है। तभी एक संतरी पुकार उठता है, वे आ गए, तैयार हो जाओ, वे आ गए, तैयार हो जाओ। वे नगर द्वार पर आक्रमण की तैयारी में दिखाई देते हैं। यरीहो की सेना नगर द्वार पर एकत्र हो जाती है। यदि द्वार तोड़ा गया तो वे युद्ध के लिए तैयार हैं और इसराइलियों को वे मार सकते हैं। तभी संतरी कहता है, वे नगर द्वार पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपना मार्ग बदलकर दूसरी ओर जा रहे हैं, और यरीहो की सेना उस ओर भागती है। मेरे विचार में वे भीतर ही भीतर चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें संतरियों से संदेश मिल रहा था कि वे यहाँ आ गए हैं, वे यहाँ आ गए हैं, वे वहां आ गए हैं। मेरे मित्रों, इसराइली इसी प्रकार चक्कर काटकर अपनी छावनी में लौट जाते हैं। यहाँ एक बात तो निश्चित है कि राजा और सेना पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई थी। हम यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 से 14 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, विहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। मेरे मित्रों, हम पाते हैं कि दूसरे दिन फिर इसराइली वहां पहुंचते हैं। संतरी संदेश भेजते हैं कि वे फिर आ गए हैं। वे शहर का चक्कर काटकर फिर लौट जाते हैं। 6 दिन तक वे यही एक काम करते रहे। 6ठे दिन यरीहो के पेंटागन में देर रात तक सभा हुई। शहरपनाह के बाहर सेना भी अब थकने लगी थी। संभवतः कुछ ने कहा होगा, हम ये क्या कर रहे हैं, मूर्खों जैसा काम है। यदि आप यहोशू से पूछते कि वह क्यों ऐसा कर रहा है, तो वह उत्तर देता, यहोवा की सेना के प्रधान की यही आज्ञा है, उसने कहा है और मैं कर रहा हूं। तब हम यहोशू 6 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। यहाँ पर हम देखते हैं 7वें दिन भी इसराइली आते हैं और चक्कर लगाते हैं। उनका चक्कर पूरा होते ही यरीहो की सेना राहत की सांस लेती है। तभी संतरी संदेश भेजता है कि वे एक और चक्कर काटने जा रहे हैं। इसराइली दूसरा चक्कर भी पूरा करते हैं, तब तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर और इसी प्रकार 7 चक्कर काटते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू अपनी सेना के साथ कोई भी आक्रमण नहीं कर रहा है, परंतु वह सिर्फ परमेश्वर के प्रधान दूत के द्वारा जो आज्ञा उसे दी गई है उसे ही वह पूरा कर रहा है। और हम निश्चय ही आगे इस बात को देखेंगे कि यरीहो नगर यहोशू अपने कब्जे में कर लेता है। आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक महान विषय है कि क्या आज मैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्या हम उसके अनुसार चलने की इच्छा करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी यहोशू और इसराइलियों के समूह के समान हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यदि आज बिना कुछ प्रश्न किए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो निश्चय जाने कि हम भी विजय को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन के हर एक तकलीफों पर हम विजय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के उस महान सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर अब समाप्त होता है और मैं यह विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबों की सहायता करें कि आप भी यहोशू के समान आज्ञाकारी बने और परमेश्वर के उन महान आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
नूर की किरणों में डूब के अब तू जन्म नया एक ले ले, जन्म नया ले ले। नूर की किरणों में डूब के अब तू जन्म नया एक ले ले, तेरी ही खातिर तो जीवन भरिए बदली बरसी है खातिर तो जीवन भरिए बदली। बरसी है आ, खून में नहाए रहम और माफ़ी की मेघा बरसी है आ, मेघा